जब हमने पिछली बार शुरू करा था पहले अध्याय में, तो पहले अध्याय में हमने इस बात को देखा था किस प्रकार से कलीसिया में को परमेश्वर के सत्य वचन पर मजबूत रहना है, सत्य वचन पर निर्मित होना है और दृढ़ और मजबूत बने रहना है, जो उसके अनुग्रह द्वारा हम बचाए गए हैं। कैसे? हमें उस व्यवस्था के द्वारा नहीं, लेकिन अनुग्रह द्वारा हम बचाए गए। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार के साथ किस प्रकार से हमें सुसमाचार को थामे रहना है और सुसमाचार के सेवा में हमें सहभागी होना है। उसके साथ साथ किस प्रकार से हमें अपने विश्वास को और अपने विवेक को थामे रहना है। तो इन बातों को हमने तीन खंडों में अलग अलग देखा था। जब दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं, तो दूसरे अध्याय में एक विश्वासी के कर्तव्य निष्ठा परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करती है। एक विश्वासी की कर्तव्य निष्ठा, जो उसकी निष्ठा है, इंटीग्रिटी है, वो किस प्रकार से परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करती है, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करती है। हाउ बिलीवर फुलफिल गॉड्स पर्पस थ्रू हिज इंटीग्रिटी, किस प्रकार से, बहुत जरूरी है। और ये सत्य निष्ठा जो है, या कर्तव्य निष्ठा जो है, कार्य करने की निष्ठा जो है, जो दूसरा अध्याय दो बातों में है, एक सुसमाचार प्रचार और दूसरा प्रार्थना। तो पहला भाग जो है प्रार्थना का है, दूसरा भाग सुसमाचार प्रचार का है। और तब उसके बाद कुछ व्यवहारिक बातें हैं कि किस प्रकार से, जो दूसरा अध्याय ये है, जो जिम्मेदारी दे रहे, वो कलीसिया की जिम्मेदारी है, बाहर की बात नहीं हो रही है। ये कलीसिया विश्वासी का घर जो है, कलीसिया, उसमें जब हम कलीसिया में, तो किस प्रकार से एक कलीसिया की जिम्मेदारी है। मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा अध्याय पहले पद से लेकर सात पद तक। अब सबसे पहले मेरा अनुरोध यह है कि विनतियां और प्रार्थनाएं, निवेदन तथा धन्यवाद सब मनुष्य के लिए अर्पित किए जाएं, विशेष रूप से राजाओं और सब पदाधिकारियों के लिए, जिससे कि हम चैन और शांति सहित पूर्ण भक्ति तथा गंभीरता के साथ जीवन व्यतीत कर सके। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की दृष्टि में भला और ग्रहण योग्य है, जो चाहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जानें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर तथा मनुष्य के बीच एक ही मध्यस्थ भी है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने आप को सबकी फिरौती के दाम में दे दिया और इसकी साक्षी उचित समय पर दी गई। मैं सत्य कहता हूं, झूठ नहीं बोलता। इसी अभिप्राय से मैं प्रचारक, प्रेरित और गैर यहूदियों के विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया हूं। और यहां पर पौलुस कुछ बातों को लिखते हुए मुझे और आपको प्रोत्साहित करता है। कलीसिया का उत्तरदायित्व, एक विश्वासी जो कलीसिया का भाग है, उसका उत्तरदायित्व क्या है? और यहां पर वो कह रहा है कि आराधना के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, अब कब? जब तुमने उद्धार को प्राप्त कर लिया, जब तुमने उद्धार को प्राप्त, सुसमाचार को समझ लिया, और सुसमाचार को समझने के कारण तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, और अब तुम उसकी कलीसिया में, उसके परिवार में जुड़ गए हो। अब तुम अपने विश्वास और उस शिक्षा को, अपने विवेक को थामे रखकर आगे बढ़ रहे हो। अब तुम्हें और क्या करना है? कह रहा है, अब सबसे पहले यह अनुरोध यह है। पौलुस यह आदेश नहीं दे रहा, लेकिन एक अनुरोध कर रहा है। क्या अनुरोध कर रहा है? मुझे और आपको प्रोत्साहित करना चाह रहा है, मेरे और आपको ये कहना चाह रहा है कि बहुत अधिक अनिवार्य है। इसलिए भाई बहनों, मैं चाहता तुम ये करो, ये कलीसिया ये करे। और जब इसीलिए कलीसियाओं में जब प्रार्थना होती है, तो हम प्रोत्साहित करते हैं कि हम इन बातों को ध्यान में रखकर प्रार्थना करें। आज भाई देश राज्य में प्रार्थना करिए, देश के लिए प्रार्थना करिए, अपने प्रांत के लिए प्रार्थना करिए, लोगों के लिए प्रार्थना करिए। ये वचन के अनुसार है। जब हम प्रार्थना सभा में इकट्ठा होते हैं, मीटिंग में होते हैं, तब भी हम स्मरण करते हैं इस बात को, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी आराधना का संचालन करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार। अब वो क्या कहता है? मेरा अनुरोध यह है, विनतियां, प्रार्थनाएं, निवेदन, धन्यवाद, चार चीजें। और पौलुस कई बार इन चारों चीजों को अलग अलग स्थानों में दोहराता है, मुझे और आपको प्रेरित करता है। विनतियां, सप्लिकेशन, प्रार्थनाएं, प्रेयर्स, निवेदन, इंटरसेशन, धन्यवाद, थैंक्सगिविंग। ये चार अलग अलग चीजों का वो उपयोग करता है। इंग्लिश में इस तरह से दिया हुआ गया है। विनती का मतलब क्या है? एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर के कर्तव्य को पूरा करते हुए, परमेश्वर में बढ़ते हुए, उसका एक जिम्मेदारी है कि वो इन चार चीजों को अपने जीवन में लागू करे, चारों जीवन में लागू करें। पहली बात, जब हम विनतियां के बारे में बातें हैं, जो प्रेयर्स के बारे में बातें हैं, जो सप्लीकेशन है, सप्लीकेशन जो शब्द है वो हमारी आशाओं से संबंधित है कि हम परमेश्वर के सामने अपनी आशाओं को लेकर आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर हमारी आशाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन आवश्यकताएं अलग होती हैं, चाहना अलग होती है, इच्छाएं अलग होती हैं। हमारी नीड्स अलग हैं, हमारी डिजायर्स अलग हैं। हमारी नीड्स को जो परमेश्वर चाहता जानता है वो उसको पूरा करने के लिए तैयार रहता है, अपनी इच्छा में, अपनी सार्वभौमिकता में, अपनी योजना में, अपनी भरपूरी में, अपनी समझ में। क्योंकि जो हम समझते हैं वो परमेश्वर नहीं समझता, परमेश्वर कुछ और समझता है। हमारा समझ अपने स्वार्थ में होती है, परमेश्वर की समझ अपनी महिमा के लिए होती है, अपने हमारे अच्छाई के लिए होती है, हमारी भलाई के लिए होती है। तो उसकी समझ में और हमारी समझ में कई बार फर्क पाया था। हम जब प्रार्थना करते हैं अपनी आशाओं को लेकर, मान लीजिए मैं अपनी दैनिक आशाओं के लिए भोजन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर मैं भोजन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रभु तू मेरी आशाओं को पूरा कर ताकि मुझे भोजन मिल सके, मुझे खाना मिल सके, मेरे पास छत हो सके, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या बैठे बैठे मैं भोजन प्राप्त कर सकता हूं? क्या बैठे बैठे मुझे छत मिल सकती है? क्या बैठे बैठे मैं अपने बच्चों का लालन पालन कर सकता हूं? परमेश्वर ने अपने उदाहरण से, अपने जीवन के उदाहरण से मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा। जब उसने सृष्टि की रचना की, अगर आप निर्गमन में आइए तो निर्गमन में जब परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, बहुत स्थल है लेकिन एक आध पदों को मैं आपके सामने, क्योंकि कई बार हम परमेश्वर से ऐसे मांगते हैं जैसे कोई परचून की दुकान में जाकर कोई परचून, कोई नमक मिर्चा मांगता हो, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। इसको समझना है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। मैं हमेशा इस बात को उदाहरण में कई तरह समझाता हूं, फिर से हम देखना चाहेंगे आठवां पद यहां पर, बल्कि आठवें पद से लिखा, लेकिन ग्यारहवें पद को हम देखेंगे समय बचाने के लिए। ग्यारहवें पद में क्या लिखा है? यहां पर आठवें पद में परमेश्वर विश्राम के दिन को मानने के लिए कहता है कि तुम समय विश्राम का दिन लोगों के लिए ठहराया गया था कि छह दिन वो काम करेंगे और सातवें दिन वो विश्राम करेंगे। आज विश्राम का दिन हमारे लिए नहीं, लेकिन हमारे लिए ये विश्राम का दिन जो है आराधना का दिन है। हम परमेश्वर के लोगों के साथ उसके बारे में आराधना करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठा और उसने इस दिन को आराधना के लिए ठहरा दिया। लेकिन जो मैं विशेष बात आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कहना था ग्यारह पद में, क्योंकि यहोवा ने छह दिन में आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और सातवें दिन विश्राम किया। क्या करा छह दिन परमेश्वर ने? परमेश्वर ने स्वयं छह दिन काम किया, परिश्रम किया। जब हम अपनी आशाओं की बात करते हैं, मैं आशाओं की बात कर रहा हूं, चाहने की बात नहीं कर रहा हूं, डिजायर की बात नहीं कर रहा हूं। हमारी डिजायर बहुत है, हमारी बहुत अभिलाषाएं होती है, अभिलाषाओं की बात नहीं कर रहा हूं। ये प्रतिदिन की आशाओं को अगर आप मत्ती उसके छह अध्याय में जाए तो परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में मेरा और आपका जीवन उन गौरवियों से बढ़कर है, उन गौरवियों से बढ़कर है। परमेश्वर का दृष्टि में मेरा और आपका जीवन बहुमूल्य है, वो मेरी और आपकी चिंता करता है, मुझे अपनी चिंता नहीं करनी। अब जब वो कहता है मुझे अपनी चिंता नहीं करनी तो हाथ पे हाथ रखकर बैठने के लिए नहीं कहता। चिंता ना करना मतलब यह है कि हमें रात दिन परेशान होना, रोना, विलाप करना और किसी ना किसी रीति से हाय 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 करके जीवन व्यतीत करना, ये परमेश्वर नहीं चाहता। हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है, परमेश्वर हमें श्वास देता है। सोच लीजिए, अगर ये हाथ मेरे पास ना होते तो मैं क्या कर सकता था? यदि ये मुंह मेरे पास ना होता तो मैं क्या कर सकता था? सबसे बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने श्वास दिया है, जीवन दिया है। ये इसीलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर के सामने केवल मांगना, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है परिश्रम करें, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें, अपने जिम्मेदारी को पूरा करें। तो जब हम प्रार्थना के बारे में आते हैं, बहुत हम विस्तार में जाते हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, ये पहली चीज जो ये है, जो सप्लीकेशन के लिए कह रहा है, विनती के लिए कह रहा है, वो हमारी दैनिक वस्तुओं से, दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित है और परमेश्वर उन विनतियों को सुनने के लिए तैयार रहता है। हाँ, ये जरूर है, हर समय में, हर परिस्थिति में हमको उसकी इच्छा को समझना है। कुछ प्रार्थना का उत्तर प्रभु तुरंत देता है, कुछ प्रार्थना का उत्तर नामे देता है, कुछ प्रार्थना का उत्तर प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। अलग अलग उसके तरीके हैं, हमें उसे समझना है, लेकिन हमें उससे विनतियां करने हैं, ना केवल विनतियां करने, क्योंकि हम इस देश में, संसार में, पृथ्वी में और ये सारी चीजें हैं, प्रार्थना है। जब प्रार्थना के बारे में कहता है तो प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है, परमेश्वर से बात करना है, और ये हमारे जीवन की आदत होनी चाहिए। हाँ, हमें बक बक नहीं करना, लेकिन प्रार्थना करते समय ये एक रास्ता नहीं है, ये दोनों तरफ का रास्ता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो अगर हम केवल बात करते जाएं, बात करते जाएं, बात करते जाएं और उसकी सुने ना, तो बेकार होगा। सुनने का भी समय है तो बोलने का समय है, परमेश्वर से बोलने का भी समय है तो परमेश्वर के सुनने का भी समय है। जब मैं और आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा हमसे बात करता है। जब अपने आप को परमेश्वर सामने रखते हैं तो परमेश्वर हमारे सुनता है। परमेश्वर, ये हमारा संबंध है, रिलेशनशिप है। परमेश्वर ने आदम की बाटी में, सृष्टि के समय में जब मनुष्य को बनाया, सबसे पहले उसने मनुष्य के साथ अपने संबंध को बनाया, संबंध को स्थापित किया, और वो निरंतर, यद्यपि पाप आया, पाप टूटा भी आगे चल के हम देखेंगे पाप के कारण, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको पुनः यीशु मसीह द्वारा स्थापित किया। तब उसके बाद कहता है ना केवल, लेकिन निवेदन, निवेदन जब हम बहुत ही अधिक बोझ के साथ, पीड़ा के साथ, शायद कोई बीमार है, शायद कोई और स्थिति परिस्थिति है, शायद देश की स्थिति है। आपको मालूम है जब पौलुस लिख रहा है तो उस समय रोम का शासन, रोम के राज में नीरो शासक था, और नीरो उस समय मसीहों को बहुत अधिक सता रहा था, बहुत अधिक सता रहा था। तो उस सारी परिस्थिति में ये इनको प्रोत्साहित करता है, ठीक है तुम अपने लिए प्रार्थना करो, लेकिन उस बोझ के साथ, जब हम किसी पीड़ा के साथ, बोझ के साथ, दर्द के साथ किसी के लिए प्रार्थना, शायद हमारे रिश्तेदार में कोई है वो प्रभु को नहीं जानता और हम चाहते हैं वो प्रभु में आ जाए, शायद मेरी पत्नी है, शायद मेरा पति है, शायद मेरे बच्चे हैं, शायद मेरा मित्र है, मेरा पड़ोसी है, शायद मेरा अधिकारी कोई है जिसके लिए हम, और हम उसके लिए बोझ के साथ, उपवास के साथ, दर्द के साथ, आंसू साथ विनती करते हैं और विनती करते चले जाते हैं। सो अपने बोझ को, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को परमेश्वर के सामने उंडेल देना, यह है, और इसमें उपाय आता है। और एक विश्वासी को हर तरह के चीजों को समझना और करना के लिए तैयार रहना है। उसको विनती भी आने चाहिए, उसको प्रार्थना भी आने चाहिए, उसको इस तरह से निवेदन करना भी आना चाहिए। निवेदन एक रिक्वेस्ट करना है, जैसे वो स्त्री के पास आती है, प्रभु के पास आती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो अपने बच्चे की चंगाई के लिए कहता है कि मैं यहूदियों को छोड़ और किसी के लिए ना, लोग उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, वो ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन वो शिष्यों को कुछ सिखाना चाह रहे थे, और इसलिए, लेकिन उसने कहा कि जो मेज पे से टुकड़े गिर जाते हैं उनको भी कुत्ते उठाकर खाते हैं। क्या था? तब प्रभु मसीह का इस स्त्री के विश्वास के आधार मैंने तू किसी और विश्वास नहीं, वो अपने शिष्य को सिखाना चाह रहा था। उसकी पीड़ा थी, वो प्रभु से हटना नहीं चाह रही थी जब तक प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन ना ले। कितनी बार हम बाइबल में, नए नियम में इस तरह को देखते हैं, कई बार हमारे घर बच्चे बीमार हो जाते हैं, शायद हमें पीड़ा मिल जाती है, लेकिन कितना अधिक हम कलीसिया में एक दूसरे के लिए, विश्वासियों के लिए, विश्वासी के आत्मिक उन्नति के लिए, विश्वासियों के बढ़ने के लिए हम कितना अधिक प्रार्थना करते हैं, कितना अधिक उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते, इसीलिए पिछले दिनों जब यहाँ पर, अभी आने वाले दिन में हम फिर कुछ करेंगे, कुछ भाइयों ने मुझसे शेयर करा, कई बार हम दूसरे परिवारों को जानते नहीं। अब मुझसे भाइयों ने कहा कि अच्छा होगा क्या अंकल कि आप एक एक परिवार को लेकर के एक दूसरे का परिचय कराइए। वो अच्छा है, मैंने कहा हम जरूर करेंगे, प्रभु ने चाहा आने वाले महीने में मेंबर मीटिंग करेंगे, उसमें जरूर करेंगे। सो ये हमें मालूम होना चाहिए, सच है, ताकि हम एक दूसरे को और जान सके, एक दूसरे के लिए और प्रार्थना कर सके, एक दूसरे सोच सके। सो ये जो निवेदन है, ये बोझ है, दर्द है, पीड़ा है, ये हमें सीखना चाहिए। हमें घुटनों के बल होकर परमेश्वर से मांगना, ये चीज है। ये अपने स्वार्थ कर रही है कि मेरे पास घर हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए, मेरी नौकरी मिल जाए, मेरे, नहीं ये नहीं, उसलिए नहीं, वो आत्मिकता से संबंधित है, स्वर्ग के राज से संबंधित है, आत्मिक जीवन से संबंधित है, ये चीज है। चाहे मेरे आत्मिक जीवन में कितना अधिक मैं या आप अपनी निर्बलताओं के लिए उस वेदना के साथ प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, प्रभु आप मुझे परिवर्तित कीजिए, प्रभु आप मुझे परिवर्तित कीजिए, मेरे को उस पर विजय दे दीजिए, मेरी सहायता कीजिए, इन चीजों के लिए। सो जब हम अपने एक बोझ के साथ, पीड़ा के साथ, दर्द के साथ, एक आशा के साथ प्रभु के पास आते हैं, वो सचमुच में ये परमेश्वर का वचन कहना चाहता है। क्यों? जैसे मैंने कहा वहां पर ये लोग बहुत, अब आगे क्या प्रार्थना करने के लिए वो अलग बात है, अभी उनको सिखा रहा है हमें कैसे प्रार्थना करनी है, तब आगे चल के कहता है। तब उसके बाद धन्यवाद कह रहा है, चौथी बात कहता है निवेदन धन्यवाद सब मनुष्य के लिए जाए, सब मनुष्य के लिए। ओ किन मनुष्य के लिए जाए? अरे हमारे देश में तो प्रधानमंत्री और सब ईवीएम के द्वारा जीत गए, तो क्या हम इनके लिए धन्यवाद करें? किसके नियंत्रण में है वो, किसके नियंत्रण में? ठीक है, परमेश्वर कई बार अलाउ करता है, और परमेश्वर ने अगर अलाउ किया है तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, धन्यवाद उन परिस्थितियों के लिए, धन्यवाद देना जो शायद हमारे लिए विषम है, उन परिस्थितियों के लिए धन्यवाद देना शायद हमारे हम बीमारी में, भयंकर बीमारी में। जब मैं प्रभु में शुरू शुरू में आया था और मैं बेतल में था, तो बेतल में उस समय छत जो पक्की नहीं थी और एडबस्टर शीट की छत लगी हुई थी। तो एक भाई प्रभु में आ गया, उसका नाम ध्रुव मसी था और वो रेलवे में काम करता था। प्रभु में आके विश्वास में आगे बढ़ने लगा और एडबस्टर शीट में छत छत पे चढ़ करके वो कुछ कर रहा था, कुछ सफाई करना था, और वो छत टूट गई एडबस्टर, वो नीचे गिर गया। और जब नीचे गिर गया उसका टांग टूट गई। तुम्हारे पास से जो थे वो उसके लिए प्रार्थना, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि इसकी केवल टांग ही टूटी। मैं सोचने लगा, रही है प्रभु ऐसा धन्यवाद हो केवल इसकी टांग ही टूटी, प्रभु कह रहा है। प्रभु का सेवक प्रार्थना करा, उस समय मैं समझ में नहीं पाया, मैं वो कह रहे हैं प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस भाई की केवल टांग ही टूटी है, तूने इसको बचा लिया। बाद में मेरे समझ में आया, सचमुच में उस समय समझ में नहीं आया था क्योंकि मैं भी नया नया प्रभु में आया था, मैं जानता नहीं था इतना प्रभु को। लेकिन वो प्रार्थना मेरे लिए अजीब गरीब प्रार्थना थी कि ये इसकी तो टांग टूट गई और वो कह रहा धन्यवाद हो तेरी टांग टूटी। लेकिन सच है कई बार हम समझते नहीं, पर दूसरी ओर से उनका कहना क्या था, उनका कहना था इससे और अधिक उसकी हानि हो सकती थी, इससे और अधिक उसकी हानि हो सकती थी, लेकिन प्रभु आपने उसको बचाया है, उसको रक्षा किया। कई बार हमारे जीवन में मुसीबत आती है, संकट आते हैं, बीमारियां आती हैं, दुख आते हैं, कितनी बार हम उन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रभु धन्यवाद है उस बीमारी के लिए, ये बीमारी आई है, इसमें आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, धन्यवाद हो प्रभु इस घटी के लिए जो मेरे पास आई है, धन्यवाद हो प्रभु मेरे रास्ते बंद है लेकिन आप क्या लेना चाहते हैं, प्रभु कैसे आप रास्तों खोलना चाहते हैं, कितने विधान परमेश्वर मुझे और आपको। हम जब हरा हरा रहता है तो धन्यवाद करना अच्छा लगता है, धन्यवाद करना अच्छा, लेकिन जब थोड़ा सूखा पना आता है तो समय धन्यवाद करना मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें। कुलूसी तीसरे अध्याय में आप जाएंगे, मैं रेफरेंसेस साइड रेफरेंस नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पद है, कुलूसी 16 3 अध्याय 16 17 पद पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन ही सिखाता है। फिलिप्पियों का 6 अध्याय सॉरी एफिसियों 6 अध्याय 18 पद, फिलिप्पियों 4 अध्याय 6 पद, इन सारे स्थानों में परमेश्वर वचन बार 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 हमें धन्यवाद सिखाना। सो प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हम किस प्रकार से, ये चार बातें कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है, तब आगे कह रहा है धन्यवाद करें किसके लिए, सब मनुष्य के लिए। कौन सब मनुष्य के लिए, जो वहां पर है, कलीसिया में भी है, कलीसिया के बाहर भी। अब आगे चल के वो अब आगे कलीसिया की जिम्मेदारी ना कलीसिया के भीतर है लेकिन कलीसिया के बाहर है। क्या बाहर कलीसिया की जिम्मेदारी है, अब उसको आगे चल के वो और विस्तार में बताने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि विशेष रूप से राजाओं और सब पदाधिकारियों के लिए, विशेष रूप से राजा, चार बार वो सब 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 ऑल 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 करके इस्तेमाल करता है चार बार। पहली बार वो कह रहा है धन्यवाद सब मनुष्य के लिए, राजाओं और सब पदाधिकारियों के लिए, फिर उसके चौथे अध्याय में सब लोगों के लिए, सब लोग उद्धार पाए, फिर आगे चल के छठे पद में आपको सबकी फिरौती के लिए। चार बार वो सब सब का इस्तेमाल कर कि सब विशेष रूप से राजाओं और सब पदाधिकारियों के लिए, जिससे कि हम चैन और शांति सहित पूर्ण भक्ति तथा गंभीरता के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। ये परमेश्वर की इच्छा है। क्या कह रहा है, हमें अपनी विनतियों में, हमें अपनी प्रार्थनाओं में, हमें अपने निवेदनों में, हमें अपने धन्यवादों में, इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए सबसे बढ़कर इन लोगों के लिए करना है। किन लोगों के लिए, उन रूप से जो राजा है, जो शासक, जो अधिकारी हमारे ऊपर नियुक्त किए गए, होता वो हमारी दृष्टि में। इसीलिए रोमियों उसके 13 अध्याय में साफ लिखा है, पौलुस सिखाता है रोमियों 13 अध्याय में कि चाहे जैसे भी शासक है, बुरे है, कुटिल है, फिर भी हमें उनको अधीनता में स्वीकार करना रहना है, उनका रहना है। हाँ ये जरूर है कि हम उनको साथ समझौता नहीं करना। मैं एचएल में काम करता था, एचएल में काम करते थे मेरे जो बॉस थे वो सरदार जी थे, और प्रभु ने हमें सिखाया था कि हमें चोरी नहीं करनी है, चोरी नहीं करने, विश्वास में आगे बढ़ते। और हम हैंगर में अलीगंज में आईटीआई में थे और उस सरदार जी मेरे पास आए और सरदार जी मेरे पास आके कहने, रौली आज ये आईटीआई बंद है, वहां पर कुछ देखिए ऑफिसर क्या कह रहा है, आईटीआई बंद है वहां पर, उनका आईटीआई का कुछ लोहा पड़ा हुआ है, जरा इन लोगों के साथ जाकर तुम उठा लाओ। ऑफिसर मुझे चोरी करना, मैंने सर माफ कीजिए, जैसे मैंने हाथ जोड़कर कहा मुझे माफ कीजिए, एकदम से चौंके, वो जानते थे अच्छे से। और तब फिर थोड़ा कुछ कुछ और बातें होने लगी, पर प्रभु ने अद्भुत काम किया और उनकी ये बेटी बीमार हो गई, बहुत भयंकर रही थी, बीमार हो गई। और जब बीमार हो गई तो जो मेरे अधिकारी थे, एक और क्रिश्चियन अधिकारी बेथेल चर्च के एल्डर थे मिस्टर सेतना, वो उनके साथ थे, साथ काम करते थे। तब ये सरदार जी इतने चिंतित हो गए, सरदार जी कहने, मिस्टर छग्गर नाम था इनका, मिस्टर छग्गर कहने लगे कि मेरी बेटी बहुत बीमार है। और वो मिस्टर सेतना जो थे वो पासी बैकग्राउंड से प्रभु में आए थे और बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास थे, कहीं भी जाते थे वो पहले अपना परिचय देते थे, उनका बेटा आज अलाहाबाद सेमिनरी में बाइबल सिखाता है लोगों को। तो उन्होंने उनसे कहा, छग्गर साहब ने, कि मेरी बेटी बीमार। तो सेतना ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। आप जानते हैं वो मना नहीं करेंगे। उन्हें कहा, तो उन्होंने कहा कि हम अपने चर्च से अपने पास्टर और एल्डर्स को लेकर आएंगे, और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी मेडिकल कॉलेज में, और वहां प्रार्थना करने के लिए वहां पर आएंगे। जब प्रार्थना करने गए तो उन्होंने आके शेयर करा, पास्टर के साथ शेयर करा। हम चार भाई थे, भाई राइडर, मैं, सेतना और ब्रदरलाल, हम चार थे, और हम लोग चारों जन वहां पर प्रार्थना करने गए। प्रभु का आश्चर्य कम करने वाला परमेश्वर है, प्रभु का धन्यवाद हो। गए वहां पर, उनको सुसमाचार बांटा, बेटी को सुसमाचार बांटा, और तब उसके बाद प्रार्थना की गई, और वहां प्रार्थना हॉस्पिटल में की गई, और प्रभु ने उस बच्ची को चंगाई दे दी। कुछ समय बाद सरदार जी का सब कुछ विचार बदल गया। परमेश्वर अपने लोगों को लज्जित नहीं होने देता। कई बार हमें कठिन परिस्थिति में से होकर जाना पड़ता है, लेकिन हमें अधिकारियों की प्रार्थना करना है, उनको साक्षी देनी है, लेकिन गलत में उनके साथ समझौता नहीं करना, गलत में उनके साथ समझौता नहीं करना। दबाव में रह के अगर वो चोरी करने के लिए कहेंगे, झूठ बोलने कहेंगे, प्रसाद लेने के कहेंगे, बहुत अनुभव भरे पड़े मेरे पास, वो नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर क्यों, क्या कह रहा है, जिससे कि हम चैन सहित पूर्ण भक्ति तथा गंभीरता के साथ जीवन व्यतीत कर सके। परमेश्वर उनके मनों को नालियों की नाई बहाता है। नीति वचन कहता है परमेश्वर अधिकारियों के मनों को नालियों की नाई बहाने वाला परमेश्वर है। वो उनके मनों को निंदित करता है, और वो इस तरह से हो सके ताकि उनके राज में, और आज हमें भी इस देश भारत में ये जरूरत है, ताकि उसका सुसमाचार फैलाया जा सके, लोग उसके शांति से रह सके, रोज उसके भक्ति और गंभीरता से जीवन को व्यतीत कर सके। तीसरे पद में, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की दृष्टि में भला और ग्रहण है। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग शांति के साथ रहें। जरूर कभी कभी परमेश्वर होने देता है, चेतावनी आती है, उसके कई सारे कारण होते हैं कि कई बार मनुष्य गलती के कारण भी आता है, कई बार परमेश्वर अलाउ भी करता है, कई बार शत्रु विरोध भी लाता है। कई अलग अलग पहलू हैं जो हम चेतावनी के बारे में पाते हैं, तो अलग अलग तरीके उसके अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है यहाँ पर, वो कहता है कई बार वो चेतावनी जो है दूसरों के कारण भी विश्वासी कहते हैं, जो दूसरे गलत संसार के रीति जीते उनके थे उनके साथ भी होता है। लेकिन यहाँ पर कहता है सबसे बढ़कर बात यह है कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, वो हमारे उद्धारकर्ता, कौन हमारा उद्धारकर्ता, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की दृष्टि में भला है और ग्रहण योग्य है। क्या है, क्या उसकी आंतरिक इच्छा है, जो ये चाहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जाने। ये परमेश्वर की, हमें प्रार्थना करनी है, हमें विनती करनी है, हमें निवेदन करना है, हमें निरंतर धन्यवाद देना है उन लोगों के लिए जो संसार में है, अपने अधिकारी है। कितना अधिक आप स्कूल में, कॉलेज में अगर पढ़ाते हैं, अपने प्रिंसिपल के लिए, अपनी टीचर्स के लिए आप प्रार्थना करते हैं, कितना अधिक अगर आप ऑफिस में हैं, आपके ऑफिस के लोग प्रभु को नहीं जानते, तो आप कितना अधिक उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको अवसर दे कि आप सचमुच में उनको सुसमाचार दे सके, या किसी न किसी प्रभु के वचन को जान सके, या वो आपके लिए प्रति दयालु हो सके, कितना अधिक आप जानते हैं। तो ये हमें देखना है किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में बार बार, ये मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। हम ऑफिस में आते हैं हमेशा, अरे मेरा वो ऑफिसर खराब है, अरे वो ऐसा है, अरे वो ऐसा है, लेकिन कितना अधिक हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, कितना अधिक बच्चे अपने टीचर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। ये परमेश्वर ने एक हमें बहुत अधिक एक अधिकार दिया हुआ है, और हमें इस बात को सीखना है, इस बात को सीखना है, अपने व्यवहार को संभाल कर रखते हुए, इन बातों करते हुए, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर का नाम हो सके और किसी न किसी से लोग यीशु मसीह को जाने। मेरे प्रिय, जरूरी नहीं है कि आप जिस स्कूल कॉलेज में सब प्रभु को जान लें, लेकिन अगर आपके द्वारा किसी ने प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुन लिया, सुसमाचार को सुन लिया, मेरे प्रियो, वो कह नहीं सकेंगे कि हमने यीशु आपके सुसमाचार को नहीं जाना। विश्वास करना ना करना उनके हाथ में है, प्रभु का चुनाव प्रभु के हाथ अधिकार में, प्रभु का क्या चाहता है वो उसकी मर्जी। लेकिन सबसे बड़ी प्रभु की इच्छा यह है कि मैं और आप जहां कहीं भी हैं, बिना साक्षी के, बिना गवाही के, बिना सुसमाचार बांटे, बिना यीशु के बारे में बात करे हुए, बिना उनके लिए प्रार्थना करे हुए, हम उस स्थान में जीवन व्यतीत ना करें। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब क्रिसमस आ रहा है, आप बहुत अच्छा क्रिसमस मनाएंगे, बहुत अच्छे, कोई बुरा नहीं, लेकिन क्या आप प्लानिंग करेंगे पहले कि इस सुसमाचार के इस समय में मैं कम से कम 2 या 3 परिवार को अपने घर बुला करके उनको शायद चाय पानी पिलाऊं, कुछ करूं, लेकिन यीशु के संदेश को दे सकूं, कोई सुसमाचार दे सकूं, शायद नया नियम उनके हाथ में दे सकूं, एक न्यू टेस्टमेंट, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी न्यू टेस्टमेंट है, एक गिफ्ट के रूप में इनको दे सकूं, आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल को दे सकें, आप स्कूल कॉलेज को किसी अधिकारी को दे सकें। ये हमारे जीवन का तरीके हैं सुसमाचार को पहुंचाने के। हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, व्यवहारिकता हमें जीवन में आनी है। हम कितने लोगों के बीच में रहते हैं, प्रभु का धन्यवाद हम कहना चाहते हैं, भैया यहाँ थे जिस समय यहाँ बम फेंका गया था, जितने भी पुलिस अधिकारी आए, भैया लोगों ने बैठकर उनसे बातें की, सुसमाचार दिया और हर एक के हाथ में बाइबल पहुंचाई। ये बम फेंका जाना आशीष का कारण बन गया था। हमें सीखना है, हमें जानना है, हमें करना है। चाहे कितने बड़े बड़े ऑफिसर आए, पुलिस के बहुत ऑफिसर यहाँ पर उन दिन में आए, सबके साथ बैठते थे, बात करते थे बाइबल के हाथ। मेरे प्रियो, ये सच है कि हमें परमेश्वर ने एक गवाह बना के रखा है। ये प्रार्थना ही हमें वो शक्ति प्रदान करती है, ये प्रार्थना ही हमें वो बोझ देती है, ये प्रार्थना ही हमें प्रेरणा प्रदान करती है, ये प्रार्थना ही हमें समझ देती है, ये प्रार्थना ही हमें हमारे अगुवाई करती है और हम बिना गवाह के जीवन नहीं व्यतीत करेंगे। ये हमें देखना है। तब वो कहता है क्यों, उसके अंदर क्या, अगर ये परमेश्वर को भाता है तो क्या ये मुझे और आपको नहीं भाना चाहिए? अगर परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी दृष्टि में भला और ग्रहण योग्य हो, कहता है सब लोग उद्धार पाए, उस वो चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब लोगों के लिए संसार में आया, उसने क्रूस पर जो बलिदान किया है वो हर के लिए किया है। ये मनुष्य का प्रत्युत्तर क्या है, ये उसके ऊपर है, परमेश्वर का चुनाव क्या है, ये उसके ऊपर है, लेकिन सुसमाचार हर एक के लिए है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक हर एक तक पहुंचाया जाएगा, तब उसका आना हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना जल्दी हो, तो आपको प्रयत्नशील रहना है कि आप सुसमाचार प्रचार के कार्य में सहभागी हो जाएं। घर में रहते हुए, पड़ोसियों में, गांव में, देहातों में, कहीं भी आप उस कार्य में ले। तब वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ना कि सत्य को जाना, सत्य कौन है, सत्य कौन है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है। यहां पर हम देखते हैं दूसरे पद में, फिर से मैं आ रहा हूं, चार बातें हैं, चैन का जीवन है, शांतिपूर्ण जीवन है, भक्तिपूर्ण जीवन है, गंभीरतापूर्ण जीवन है। दूसरे पद में चार बातें हैं, चैन का जीवन, शांतिपूर्ण जीवन, भक्तिपूर्ण जीवन, गंभीरतापूर्ण जीवन, ये परमेश्वर की दृष्टि में भला है। अब आगे क्या कह रहा है पांचवें पद में, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर तथा मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है, और कोई मध्यस्थ नहीं। मरियम मध्यस्थ नहीं है, रोमन कैथोलिक के अनुसार मरियम मध्यस्थ है। उस पर प्रार्थना करिए, क्योंकि उसकी माँ थी, उससे प्रार्थना करिए तो बेटे के पास आएंगे। मरियम स्वयं पापी थी, मरियम ने स्वयं अपने लिए कहा कि मैंने उद्धार को देख लिया है, मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है। उसने बार बार, अगर लूक क्या नाम से आप पढ़ेंगे तो आप बार बार पढ़ेंगे, लूका उसके पहले अध्याय 46-47 पद में, लूका उसका दूसरा अध्याय 22-24 पद में, बार बार इस बात को पढ़ेंगे। मरियम ने स्वयं अपने जीवन के लिए इस बात को अंगीकार करा, उसे स्वयं उद्धारकर्ता की जरूरत है, कोई और उद्धारकर्ता नहीं। मैंने इसलिए रोमन कैथोलिक का नाम लिया क्योंकि मसीह समाज में बहुत ज्यादा बहुत लोग मरियम को मानते चले आ रहे हैं और उसको मध्यस्थ मानते हैं। मरियम मध्यस्थ है, मरियम को खुद उद्धारकर्ता की जरूरत थी। इसलिए पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही मध्यस्थ है, क्यों वो मध्यस्थ है, क्यों उसको मध्यस्थ ठहराया गया, क्या करा उसने? पांच पद में कह रहा है एक ही मध्यस्थ है, और तब उसके बाद कह रहा है जो मनुष्य है, यीशु मसीह है, जो मनुष्य बनकर आया, जिसने अपने आप को सबकी फिरौती के दाम के लिए दे दे। क्या मतलब फिरौती, ये शब्द पर थोड़ा मैं ठहरना चाहूंगा, क्या मतलब फिरौती के लिए, सबकी फिरौती के दाम के लिए, कैसा उसने दाम चुकाया था? ये आसान नहीं था, ये लज्जापूर्ण था, शर्म के साथ था जो दाम उसने चुकाया था। क्यों ऐसा हुआ था? अदन की वाटिका में जब पाप आया था तो सबसे पहली चीज परमेश्वर से अलगाव बाद में आया था, उन्होंने अपने आप को लज्जा में पाया था। पाप मनुष्य के अंदर शर्म लाया, लज्जा लाया। अगर आप तीसरे अध्याय में जाएंगे उसके उत्पत्ति के, तो आपको मालूम चलेगा, तीसरे अध्याय उसके 6-7-8 पद में मालूम चलेगा। जैसे ही पाप आया, मनुष्य लजा गया, उसने अपने नंगेपन को देखा, उसकी आंखें खुल गई और नंगेपन को देखा, तब परमेश्वर आता है, तब वो अपने आप को परमेश्वर से अलग पाते हैं। शर्म, पाप ने मनुष्य के अंदर शर्म उत्पन्न कर दी, और यही शर्म के साथ, इसी लज्जा के साथ वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर मारा गया। उसने लज्जा सही, कैसे लज्जा सही, जब उसको वस्त्र उसके उतार दिए गए, जब उसको थूका गया, उसके मुंह पे थूका गया, जब उसके ऊपर उसके दोष लगाया गया, वो निर्दोष था, निष्पाप था, कुछ भी उसके अंदर नहीं था, ये क्या सरल था। आज अगर कोई भी मुझे और आपको जरा सी कोई बात में कोई दोषी ठहरा देता है, क्या प्रतिक्रिया होती है? आसान नहीं होता उसको सहना, संघर्ष करना पड़ता है, सरल नहीं होता। अरे मुझे दोषी ठहरा दिया, अरे मुझे ऐसा कर दिया, अरे मुझे ऐसा, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन सोचिए इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कोई भी पाप नहीं किया था, उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं थी, वो निष्पाप था, फिर भी उसने मेरे और आपके लिए उस मृत्यु पर लज्जा। फिरौती का मतलब क्या है? मरकुस उसके 10वां अध्याय उसके 45 पद यहां पर सुसमाचार में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपनी सेवा कराने के लिए नहीं परंतु बहुतों की फिरौती के लिए के मूल्य में प्राण देने के लिए आया। अर्थात ये जब एक व्यक्ति कोई दंडित हो जाता था और उसको दंड से छुटकारा देने के लिए उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती थी, उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता था, कीमत चुकानी पड़ती थी, और ये कीमत धन और पैसे का नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दास को छुड़ाने के लिए कई सारे व्यवस्था में और अव्यवस्था में नियम दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर प्रभु ने मेरे और आपके पाप को छुड़ाने के लिए उसकी वजह से मुझे और आपको आजाद करने के एक कीमत चुकाई है। और वो कीमत क्या थी? उस कीमत में लज्जा शामिल थी, उस कीमत में पीड़ा शामिल थी, कीमत में त्याग शामिल था, उस कीमत में परमेश्वर का सब कुछ कहना चाहिए अपने आप को शून्य कर देना शामिल था, अपने अधिकार को शून्य बना देना था। क्या उसके पास अधिकार नहीं था कि उसी समय जब लोग उसको पकड़े थे वो अब जैसे उसने कहा कि अगर मैं आज्ञा दूं 100 दूतों की 12 पलटन आएंगी और इन सबको नाश, सब कुछ कर सकता था, सब भौमिक परमेश्वर सब कुछ, लेकिन सब कुछ चुप होकर शांत होकर के उसने मेरे और आपके लिए उस कीमत को चुकाया है। इसको गंभीरता से लेना है, इसको समझना है, आसान नहीं है मेरे प्रिय। कारण क्या है? हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते, हम परमेश्वर की परिपक्वता में बढ़ नहीं पाते, मसीह जीवन को बहुत ही सरलता से लेते हैं, क्योंकि हम उस कीमत को नहीं पहचानते जो उसने मेरे और आपके लिए दी है। और इसलिए मुझे और आपको प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जी मेरी आप सहायता कीजिए, विनती करनी चाहिए, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं उस मूल्य को पहचान सकूं जो आपने मेरे लिए क्रूस पर पूरा किया है, वो कीमत जो आपने मेरे चुकाई है। शायद एक अकेला मैं पापी होता, पौलुस इसी बात को आगे कहता, मैं अकेला इस संसार में सबसे बड़ा पापी, मैं अकेला पापी होता तब भी प्रभु मेरे और के लिए ऐसा करता। आप अकेले होते तो शायद प्रभु ऐसा करता, हम सब के लिए उसने ऐसा कहा। और इसलिए कहता अपने सब की फिरौती के दाम के दिए, दाम में दिया, और इस साक्षी उचित समय पर दी गई। किस समय पर उसकी साक्षी दी गई? क्रूस पर। जैसी वो मरा लोगों ने इस बात की साक्षी दी, निश्चय परमेश्वर का पुत्र है, निश्चय परमेश्वर पुत्र है। उसके बाद जब जी उठा तब उसकी साक्षी दी गई, और ये उसके लिए। और तब वो कहता है मैं सत्य कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसने कीमत चुकाई है। अब वो बार बार एक चीज पर जोर दे रहा है, वो सत्य कह रहा है। हम सत्य को जाने, किसको जाने? प्रभु यीशु मसीह हमारा सत्य है, उसको जाना है। मैं सत्य कहता हूं, किसी प्रकार से बात को मिला जुला कर नहीं करता, लेकिन सत्य कहता हूं, ताकि क्या कह रहा है? झूठ नहीं बोलता, कि इसी अभिप्राय से, इसी उद्देश्य से। किस उद्देश्य से? मैं जान गया हूं प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए बलिदान हुआ है, मैं जान गया हूं उसने लिए मेरी कीमत चुकाई है, मैं जान गया हूं उसने मेरे लिए फिरौती का काम पूरा किया है, मैं जान गया हूं। और इसीलिए मेरी धार्मिकता नहीं, मेरी व्यवस्था का ज्ञान नहीं, मेरी रीति विधियां नहीं, मेरा अपना सब दूसरा सांसारिक आचरण वो नहीं। मेरे प्रियो ध्यान रखना है, हमारे जो धर्म के कर्म है, चर्च में आना, बाइबल पढ़ लेना, मसीह परिवार में, मेरे दादा बहुत बड़े बिशप थे या पादरी थे, अरे मैं पादरी का बेटा हूं, ये था कुछ नहीं, वो नहीं, वो कुछ बेकार है, सब बेकार है, ये सब कुछ बेकार है। जाना क्या है? जाना है कि पौलुस जान गया था कि यीशु मसीह ने उसकी फिरौती के लिए एक कीमत चुकाई है। प्रश्न है, मैं और आप कितना इस बात को जानते हैं? केवल ज्ञान रखते हैं या जीवन में अनुभव रखते हैं सच्चाई के साथ? प्रभु यीशु मसीह, अगर आपने वो कीमत मेरे लिए ना चुकाई होती तो मैं बच नहीं सकता था, मैं बच नहीं सकती थी, मैं धन्यवाद था। और पौलुस जान गया था, और इसलिए पौलुस जोर दे के कह रहा है, वो कह रहा है मैं सत्य कहता हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, कोई मिला जुला के बात नहीं कर रहा हूं, कोई अपनी खोपड़ी नहीं लगा रहा हूं, अपने ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जान गया हूं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, यीशु मसीह मेरे लिए मारा क्या है, उसने मेरे लिए निंदा सही है, उसने मेरे लिए पीड़ा सही है, उसने मेरे लिए प्राण अपने फिरौती के लिए दाम के लिए सब कुछ चुका दिया है। अब मुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी व्यवस्था का ज्ञान सब कुछ, मेरा सारा कुछ बेकार हो गया, कुछ नहीं, क्योंकि उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। क्या सच में ये हमारा है? मेरे प्रियो, जिस दिन ये आपके और मेरे अंदर, आप जितने लोग यहां पर हैं, शायद आप कलीसिया में बहुत दिन से आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपका विश्वास कितना गहरा है, मुझे नहीं मालूम आपने कितना अधिक यीशु मसीह को जाना है, मुझे नहीं मालूम कितना अधिक यीशु मसीह को सच्चाई से आपने ले लिया है, ठीक है, यीशु मसीह बहुत अच्छा है, यीशु मसीह प्रेमी है, यीशु मसीह प्यार करता है, यीशु मसीह प्रार्थना का उत्तर देता है, केवल यही काफी है, या ये है कि उसने मेरे लिए, आपके लिए, आप जानते हैं कि कीमत चुकाई है, अब कोई और चीज की जरूरत नहीं है, अब मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं अगर किसी भी रीति से मैं उसके पास जाऊंगा, उसके पास जाऊंगा, उसके सामने झुकूंगा, प्रार्थना करूंगा, यदि मेरे जीवन में कोई निर्बलता भी आएगी, यदि मेरे जीवन में कोई पाप भी आएगा, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज आएगी, फिर भी मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, क्षमा मांगूंगा, प्रभु से कहूंगा, प्रभु आपने मुझे मेरे लिए कीमत चुका दी है, आपने मेरे फिरौती दे दी है, अब मैं आपका हूं, मुझे संभाल लीजिए, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं आपके साथ चलने चाहते हैं, ये समर्पण है, ये इच्छा होनी हमारी, जिस दिन ये इच्छा हमारे अंदर भर जाएगी मेरे प्रियो, हम प्रभु के लिए दीवाने हो जाएंगे, ये हमारे अंदर आ, तब फिर हमारे दो विचार नहीं रहेंगे, हाँ ठीक है सोचते तो हैं प्रभु अच्छा है, लेकिन कैसे करेंगे हम कदम, इसको भी देखना, इसको भी, तब सब कुछ को छोड़ करके, सब कुछ को छोड़ करके प्रभु के पीछे हो, और तब वो आगे चल के कहता है, इसीलिए मैं क्या बनाऊं, मैं प्रचारक बना हूं, वो जानता है उसके प्रचार बनने का उद्देश्य क्या है, क्या प्रचार करता था वो, यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करता था, ओ यीशु मसीह संसार के पापियों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसका ये प्रचार था, चाहे रोमियो में चले जाइए, चाहे क्रुंथियों में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पौलुस ने बार बार यही बात कर प्रचार करा कि वो मेरे लिए मारा गया, प्रेरित सत्य, यीशु मसीह सत्य है, उसका वचन सत्य है, उसका उसकी शिक्षाएं सत्य है, उसका मैं, अब मुझे झुटलाने की जरूरत नहीं, अब वो वचन में और झूठी शिक्षा में झूठा सुसमाचार की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या हो रहा था, कई सारे लोग खड़े हो रहे थे जो सुसमाचार में भी मुलावट कर रहे थे, सत्य को छोड़कर कुछ और नहीं, मेरे प्रियो पौलुस आरंभ से इस बात के सुसमाचार की रक्षा करता है, और सत्य को सुसमाचार भी, हम आगे चल के जब सेकंड उसमें जाएंगे कुछ और बातों को देंगे जो सुसमाचार की शिक्षाओं से संबंधित है, तब वो कह रहा है आठवें पद आखिरी बात, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर स्थान पर पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। अब आठ नवे पद से स्त्रियों के बारे में, जिसको हम अगली बार में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको अगली बार में हम देखेंगे, लेकिन वो कहता आठ, अब पहले पद से लेकर के आठ पद तक पौलुस अपने बारे में वर्णन करते हुए तब वो लोगों को कह रहा है, क्या कह रहा है, इसलिए मैं चाहता, क्यों मैं चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा फिरौती, उसने हमारी फिरौती का दाम दे दिया है, यीशु मसीह हमारा ये सुसमाचार का कारण है, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह के लिए उसने मुझे उपदेश ठहराया है, और ये सब कुछ करना है जो हम पहले दे चुके हैं, हमें प्रार्थना करना, विनती करना है, इसलिए मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, हर स्थान पर पुरुष बिना क्रोध के, क्या मतलब बिना क्रोध, हमारा जीवन पवित्रता का जीवन चाहता है, निर्भरता का जीवन, कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, क्रोध ये लोग जो हमारे विरोधी हैं, जो सुसमाचार के विरोध में हैं, जो ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे शासक हैं जो शायद हमें सता रहे हैं, परास परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा नीरो शासक उस समय लोगों को बहुत मसीह को परेशान कर रहा था, और उनको देख करके अरे ये इसका राज खत्म हो जाए, अरे ऐसा हो जाए, कई बार हमारी स्थिति आज भी होती है, हम अपने देश में देख करके बहुत सारे, कब ये सरकार हटेगी, कब ऐसा होगा, अरे क्या हो जाए, कई तरह से हम भी कई बार ऐसे बोल देते हैं, नहीं नकारात्मक, ठहराने वाला परमेश्वर है, स्थिर करने वाला परमेश्वर है, हटाने वाला परमेश्वर है, सो हमें देखना है, और मैं बार बार बात को कहता हूं मेरे प्रियो, बार बार बात को कहता हूं, एक मसीह विश्वासियों को सरकार का आदर करना है और सरकार के नियम बनाए हुए नियम को पालन करना है, जब तक वो आपके विश्वास के लिए रुकावट का कारण ना हो, जब तक आपके सुसमाचार के प्रचार का रुकावट ना हो, लेकिन जो बातें जो नियम बनाए गए हैं हमें उनका पालन करना सीखना है, ये हमें समझना है, अगर हम नहीं पालन करते तो हम कहीं ना कहीं दोषी हैं, परमेश्वर के वचन का हम आदर नहीं करते, इसलिए हमें गंभीर होना है, और ये कह रहा है तो हमारी प्रतिक्रियाएं उनके प्रति नकारात्मक नहीं होनी है, अरे अगर उनका राज खत्म हो जाए, अगर कोई और हो जाए तो हम और अच्छा सुसमाचार प्रचार करेंगे, परमेश्वर चाहता सुसमाचार किसी भी परिस्थिति में क्यों सुसमाचार प्रचार किया जाए, लोग रुके ना, और ऐसा हुआ, पौलुस पिछली बार में हम देख रहे थे बंदी गृह में रहा, 2 साल बंदी गृह में रहा, घर में बंद किराए के मकान में रखा गया, वहां नजरबंद, वो ठीक है वही शब्द है, नजरबंद कर दिया, वो बाहर किसे जा नहीं सकता, पहरा है घर में है, लोग मिलते हैं, सब कुछ है, लेकिन जो भी उसके पास आता था वो सुषमाचार को सुनाता था। 2 साल उसको ऐसे रहना पड़ा, फिर जैसे मौका मिला फिर वो सुषमाचार के लिए पागल हो गया। लेकिन वो कहता है उस स्थान पर बिना क्रोध बिना विवाद पवित्र आत्माओं को उठाकर प्रार्थना करें। जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कठिन हो आसान हो, पीड़ा की हो सुखमय हो, कोई भी हो, घटी हो भरपूरी हो, हमें परमेश्वर के साथ रहना है, उससे प्रार्थना मांगनी है। वो प्रार्थना परमेश्वर के साथ कैसा बना है। सो पहली जिम्मेदारी एक प्रार्थना की जिम्मेदारी है जो कलीसिया की जिम्मेदारी है। इसलिए जब प्रार्थना मीटिंग का समय होता है हम बार बार लोगों को उत्साहित करते हैं कि जरूर आपके पास काम है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप जरूर प्रार्थना सभा में उपस्थित होइए। आपका घर में प्रार्थना की वेदी का बनाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पारिवारिक वेदी का बनाया जाना बहुत जरूरी है, अकेले इकट्ठा होकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो ये मसीह जीवन के लिए मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत समय हम दूसरी चीज में व्यतीत कर लेते हैं, कई बार हम वचन में बहुत समय व्यतीत करते हैं, अच्छी बात है, वचन पढ़ने में किताब पढ़ने में बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किताब पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ते पढ़ते कितना अधिक हम उसके लिए पढ़ते पढ़ते उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु ये शिक्षा आप मुझे दे रहे हैं तो मुझे मेरे से स्मरण कराइए, मुझे पालन करना सिखाइए, मुझे सिखाइए। मेरे प्रियो मेरे लाल के बहुत जरूर। और पौलुस यहाँ पर पहली बात कहता है, सो जब हम कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया में इस तरह से हमें विनती प्रार्थना आराधना करनी है, सब कुछ करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, इसलिए ताकि लोग सत्य को जाने। एक ही उद्देश्य है, चाहे सरकार में कैसी सरकार हो, चाहे शासक कैसे हो, चाहे लोग कैसे हो, चाहे हमारे मित्र कैसे हो, उद्देश्य एक है, एक उद्देश्य है कि वे भी उद्धार को प्राप्त कर सके। हमारे हाथ में उद्धार देना नहीं है, उद्धार देना परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर का कार्य है उद्धार देना, उसने अपना कार्य करा है और जिसको चाहेगा बचाएगा। लेकिन हमारा एक कार्य है जो हमें करना है कि हमें प्रभु के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना है और दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। ये दो कार्य है जो निरंतर मेरे और आपकी जिम्मेदारी है, कलीसिया की जिम्मेदारी है। और जितना अधिक हम जागृत होकर के अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपनी कलीसिया जीवन में इस कार्य को करने में संलग्न होंगे, समर्पित होंगे, प्रार्थना का जीवन, सुसमाचार बांटने का जीवन, मेरे प्रयोग प्रभु के राज का विस्तार होता चलाएगा। यही एक उद्देश्य है और परमेश्वर चाहता है। सो पौलुस इस कलीसिया को समझाने की कोशिश, तीमुथियुस को लिखते कह रहा है, तीमुथियुस जो इस कलीसिया को सिखाना है। जब हम अगली बार जाएंगे तो हम अगली बार 9 पद से आगे भाग देखेंगे, कलीसिया में स्त्रियों की क्या जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा विषय है जो पूरे संसार में बहुत वाद विवाद का विषय है, लेकिन परमेश्वर के वचन को हमें समझना जरूरी है, क्योंकि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मेरा और आपका न्याय करेगा। साफ लिखा है योना उसका 12 अध्याय उसके 48 पद, और उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि ना तो हम उसमें से कुछ घटाएं ना उसमें से हम बढ़ाएं। तो जो परमेश्वर का वचन में कह रहा है हमें उसको समझना है और हम उसको पालन करना है। जो प्रभु में हमें सहायता करिए, प्रार्थना करिए ताकि आने वाले दिनों में हम पर औरत विचार कर सके। पर आज हम ये 2 बातों को लेकर, कलीसिया की जिम्मेदारी, मेरी और आपकी जिम्मेदारी, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के सुसमाचार को दूसरों पर पहुंचा सकें और प्रार्थना के जीवन को निरंतर व्यतीत कर सके, ये परमेश्वर चाहता है। क्या आप और मैं इस बात के लिए तैयार है? क्या हम कहना चाहेंगे प्रभु मेरे अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न कर दीजिए? जब अपने जीवन को जांचते हैं क्या हम इसमें जागृत रहे? अगर हम जागृत रह नहीं रहे तो क्या हम परमेश्वर क्षमा मांगेंगे और हम कहेंगे प्रभु आप हमें क्षमा कीजिए और इस योग्य बनाइए कि जहां कहीं भी हम रहें प्रभु हम इस कार्य कर सकें ताकि आपका वचन फैल सके और आपका राज इस पृथ्वी पर आ सके, ये कलीसिया और अधिक मजबूत हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे।